Hola, Jerry. How is it going on? भक्ति का एक ऐसा स्वभाव है उनके हृदय में छोटी भी भक्ति प्रवेश हो जाती है वो दूसरे में कृष्ण के प्रति भक्ति का कहीं थोड़ा सा दूर से भी संबंध देखता है तो उसकी भूली बनी प्रशिक्षा और अपने दुर्भाग्य की निंदा करता है। यह हमारा ऐसा है very low kind of fasting is there. Bhakti makes that person or that devotee that anyone, if he sees any connection with bhakti, any relation to Krishna, if he sees that anyone is chanting the name of कोई कृष्ण का नाम है, कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है तो उसकी सबसे प्रशंसा कर अपने दुर्भाग्य को पूछता है कि हमारा ऐसा भक्ति है। दुनिया प्रेम की अंतिम सीमा पर शिखर पर खा हुए हैं और एक प्रेम की प्रशंसा कर गोपीदार established in the highest top of prayer. But even then, they are glorifying even a grass, even a piece of wood, piece of patthar, stone,
dust,
a
particular dust,
dust of any dust touched by the feet of Krishna. So if anyone wants to have a bhakti and he is chanting and remembering Krishna, but he is abusing others or if that devotee so-called devotee is criticizing all others or anyone who is chanting the mantra, then we should understand that he has not tasted a drop of bhakti and he is lacks and lacks, but he will not have. If anyone abusing, squirming, and not seeing the good qualities of any bhakta, then he should go to Parmanasa and there he should drink, he should
drown in that
Parmanasa river, not in Ganges
and Jamuna.
Unko Ganga Jamuna mein nahi, Parmanasa river मगध प्रदेश में जरासंध के राज्य में रहती है, वहां जाकर के डूब जाना चाहिए। सो एनिमल इज देवान के लिए तो बीटा भक्ति They should never criticize anyone who is chanting, remembering, living in Vrindavan. They should, if an ant of Vrindavan fights, even they should do like this. Then they are qualified to be in Vrindavan, otherwise not. And if they are criticizing any Vaishnavi, devotee, a separate hell will be
formed for them.
For them will be. These hells are not sufficient for that. They are not qualified to hear all these things. So, if they are any, यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए इन गोपियों से. इतनी ऊंची ऊंची कथाएं सुनते हैं, वैष्णवों से लड़ते झगड़ते हैं और हमारे पास में आकर के नालिश करेंगे. उनको कोर्ट में जाना चाहिए. वो सब हम लोग देखने सुनने के लिए समय बर्बाद कर रहे. वी आर नॉट कम टू वेस्ट आवर टाइम से. So, gopis are telling, I am telling all these things, I am explaining all these things from so many days. The words of Srimati Radhika, the words of Gopi, the words of Sukadeva Goswami, the words of Srimati Radhika. But then, आज मैंने व्याख्या की कल कि ये गोपियां प्रेम की शिखर पर आरूढ़ होकर के भी जिस किसी प्रकार से कृष्ण का कोई भी संबंध देखती है किसी में, वो कहते हैं किसी का जीवन सार्थक है. हम जन्म लेकर के कुछ देते हैं, यदि वो देखते हैं कि ये हवा वहां करके आ रही है नंदगांव से और कृष्ण के अंगों से बात करके आ रही है, मैं हवा लेकर के जन्म लेता हूँ, विधाता में हवा लेता हूँ. और श्रीमती और कृष्ण क्या सोचते हैं, जस्या कदाचि वसनं चोखे लोमस्थ धन्यादि धन्य पौनेन पिता मधुसूदनोऽपि स्वयं भगवान है, समस्त अवतारों के अवतारी है. और वो कह रहे हैं कि हवा को मैं से मैं कृतार्थ हो जाता हूँ, जो राधिका जी के नहीं राधिका जी के अंचल को स्पर्श कर आ रही है. और कृष्ण को लगे कहते हैं धन्य आदि धन्य पौने लगता हवा धन्य है. आप उस धन्य को हवा धन्य को पाकर के स्पर्श करके मेरा जीवन आज कृता. तो भक्तों को कैसा होना चाहिए, ऐसा सब
Maharaj has already explained the first part in English also, I think it is clear. Just now Maharaj is saying again that he has been explaining since two, three days here that what Radharani is having feeling, what she is saying, what gopis are saying, what Śrīla Sanātana Goswami, Śukadeva Goswami is saying. Maharaj is saying that gopis are situated in the highest platform of love. But still, whenever they see any person, anything slightly connected with Krishna, they become too much obliged and too much surrendered to that thing. They appreciate that thing like anything. If any wind is coming after touching the pitambar of Krishna, and it comes to gopis. Gopi is appreciating it, admiring it like anything. What to speak of gopis? Maharaj is explaining, and he quoted one shloka. Krishna himself, who is fountainhead of all incarnations, who is Swayam Bhagavan, he himself says that, oh, this wind is, this air is so much great, so much fortunate,
blessed,
so much blessed, dhanya hai, this air is blessed. Why? Because it is coming after touching the anchal of Radharani. What will we call anchal? Sari of Radharani. And it has that fragrance. And Krishna says that I am very much indebted to this air because it has touched me. So this is the state of devotee.
यहाँ सनातन गोस्वामी धन्यास्म मूल मसोलोकी ज्ञानंतनंदनम पाश्व विकृत छवि आकर्ण वृत्तम तापस्कारा पूजा प्रणयाम धन्यास्म मूल मसोलोकी गोपिया कार्य महाभावत वृंदावन की तो बात ही क्या है, इसके पहले वृंदावन के वृंदावन वृंदावन की मैं क्या कहूँ, वृंदावन तो कृष्ण की प्यार नहीं है, नंगे पांव उठा रखने के और वृंदावन उनकी सब प्रकार से सेवा करता है, उनके पत्तरों की सेवा करता है, उनके सखाओं की, उनकी गलियों की, सबकी सेवा करता है, उनके लिए गोवर्धन की शिलाएं देता है जिस पर कृष्ण विराजमान होते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर कुंज देते हैं, उनके लिए वृंदावन भूमि खेलने के लिए, स्नान करने के लिए कुसुम सरोवर, मानस गंगा, पावन सूर्य इत्यादि ये सब चीज देते हैं, प्रकृति को सजा करके वृंदावन करते हैं। वृंदावन की महिमा क्या थी बचपन से लेकर किशोर अवस्था, सच में वृंदावन उनके कृष्ण के और उनके संगी साथी जितने सबके आश्रय है। वृंदावन की मैं क्या महिमा वर्णन करूं, वृंदावन की भूली करना भी हम नहीं हो सकते, और बदलाया था या कृष्ण चरण रखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उद्धव जी उद्धव अक्रूर जी वहां पर चरण में जोड़ते हैं इस भूमि
कीर्तन की
प्रणय लोक के द्वारा कृष्ण को प्रणय पूर्वक देखकर अपने आंखों से उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं। देखो यही कर रहे हैं मूर्ख होने का। मूर्ख किसकी है? ये नहीं सोचती है कि कौन बंसी बजाए, बैंड बजाए, कोई पहलिया तो नहीं जो जाने से उसे मार डाले का। अधिकांश में पहले भी चिड़ियों का शिकार करने के लिए बंसी बजाते हैं और जाल में उसे फंसा कर उसे मार कर उसका मांस खाते हैं, हिरणियों को पकाने। ये कौन बंसी बजा रहा है, किसने बजा रहा है? फिर जब कृष्ण बैंड वादन करते हैं तो ये मूड हो करके भी नहीं जानती कि कहाँ हम जा रही थी, तो फिर भी आकर्षित हुई होकर कृष्ण के समीप पहुंच जाती। इतनी समीप में पहुंच जाती है कृष्ण उनका स्पर्श कर सकते हैं। पहुंच करके विचित्र वेश देखती है। कैसा वेश? बरहा पूर्ण पढ़ने योग ऐसा सुनकर वेश देखती है, अपने को कृष्ण के ऊपर में न्यौछावर कर देती है। ये कृष्ण कौन? केवल कृष्ण नहीं, नंदा नंदन भगवत्ता की रस की ये सीमा है। देख करके पागलनी शुरू हो जाती है, खड़ी होकर के क्या करती है? बड़े से बड़े प्रीति पूर्वक कृष्ण के आंखों की तरफ में देखते हैं, आंखें में आंखें मिला उनका रूप समुद्र देखते हैं और कानों से कृष्ण के वेणु वादक वेणुनाद को श्रवण करते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं सनातन गोस्वामी रचिता विशेष रूप से रचिता आचरिता विशेष रूप से पूजा करती है। पूजा ही नहीं करती, पूजा तो 16 प्रकार के उपकरणों से 12 प्रकार के उपकरणों से कोई पुजारी कृष्ण की पूजा करता है, किंतु वह पूजा पूर्ण भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। इन लोगों ने जो पूजा की जिस प्रकार से कोई भी उपकरण नहीं, न जल है न चंदन है न आरती है न कुछ है, किंतु प्रणय के द्वारा जो कृष्ण के तरफ में देख रही है ये ऐसी उनकी आराधना हुई, ऐसी पूजा हुई जिसकी कोई तुलना नहीं। अब कृष्ण ने किया क्या? दधव। अब दधव को कृष्ण के तरफ में भी लगाओ। कृष्ण उस पूजा को किस पूजा को जो प्रणय से कृष्ण की आरती उतार रहे हैं देख रही है, प्रणय की भीख मांग रही है, कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर के उसकी पूजा को करते हैं और सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे इसमें लिखा है राय रामन संवाद सब बताते हैं उपकरणों के साथ में कृष्ण की जो पूजा होती है उस पूजा में जरूरी नहीं है कि कृष्ण की तृप्ति हो। यदि पूजक के हृदय में प्रेम है, ऐसा अनुराग है, तो कृष्ण ग्रहण करते हैं। जैसे किसी को भूख और प्यास नहीं है, भोजन संघर्ष उसके सामने है, बड़ा सुस्वादित भोजन, किंतु उसका अच्छा नहीं लगेगा। प्यास नहीं है, सुशीतल जल उसके सामने देने से भी वो ग्रहण नहीं करता। यदि प्यास और भूख है तो अन्न और जल की जैसा भी हो, एक सूखी रोटी में भी उसकी बड़ी तृप्ति होती है, बहुत ही रसा स्वाद उसको होता है। और भूख नहीं है तो मोहन भोग और मिठाई भी उसके लिए कुछ नहीं। इसे भूख के ऊपर में, प्यास के ऊपर में भोजन और पान का रसा स्वादन निर्भर। भूख ही नहीं है क्या करेगा, प्यास नहीं है वो पानी की क्या जरूरत। इसलिए जिसके अंदर में कृष्ण की के प्रेम की भूख नहीं है, उसके समस्त उपकरणों के द्वारा दिया जाने वाली पूजा और अर्चन आराधना भी निष्फल। अब इसमें देखा जाता है भूख किसमें है। जिसको भूख लगेगी उसको अच्छा लगेगा, तृप्ति होगी। अब देखो जिसे साधक में यदि भूख है तब तो उसको बहुत ही अच्छी लगेगी, किंतु यहां पर कहते हैं कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण को तृप्ति होती है। ये कैसे? इसलिए यशोदा जी को कृष्ण को यदि खिलाने के लिए भूख होती है तो कृष्ण को भी भूख लगती है। और यशोदा जी को सेवा करने की भूख नहीं है तो कृष्ण को कभी भी भूख नहीं है। ये सुदामा विप्र द्वारका में जाते हैं, किंतु ये हम देखते हैं कि हमारी भाभी ने कुछ दिया होगा जरूर, और ये देह में भी अपने बगल में रखे हैं तो कृष्ण को भूख लगी। क्यों? देह नहीं रही है तभी उनको भूख लगी, और उनके बगल से निकाल करके कृष्ण को प्रीति हुई। क्यों? ले गए थे खिलाने के लिए, प्रेम तो है कि तू पकड़ने नहीं सूखा चिड़वा। क्या कृष्ण को रसस्त और अच्छी सुस्वादित चीज चाहिए। कीड़े में कुछ रस है, पानी यदि ना दो उसमें तो नीरस बस, और वो भी कहने कब का पुराना और टुकड़े। किंतु उसी को कृष्ण पा करते उनको बड़ी भूख लगी। क्यों लगी? उनको भूख नहीं लगती, किंतु भूख थी उनकी ब्राह्मण की पत्नी को और ब्राह्मण को भूख थी प्रेम की, इसलिए उनको भूख लगी और उसी से वो तृप्त होकर के उनको बहुत कुछ दे दिया जिसकी कल्पना नहीं करते। इसलिए ये किरणियों के लिए दुखिया करें, आहार उनका जीवन सार्थक है। जान बहु विरचिता विशेष रूप से उन्होंने पूजा की, वो पूजा क्या की? प्रेम से अपने नैनों से कृष्ण की आर्थिक खात प्रेम। और उस समय में पूजा में घंटा घड़िया कुछ बजना चाहिए ना, तो कृष्ण स्वयं ही बांसुरी बजा रहे हैं, इतने तृप्त होकर के कर रहे हैं। इसलिए बड़ी आनंदित होकर के अपना सर्वस्व आंखों के माध्यम से देख करके उनकी आर्थिक दाग रही है। ये सर्वस्व आ रहे हैं, सर्वोच्च आ रहे हैं।
First, Gopiya has glorified Vrindavan. Maharaj, are you hearing me?
Yes.
I will speak loudly. You are also hearing me. First, Maharaj quoted a shloka in which Gopis first glorified Vrindavan. They say, what to speak of Vrindavan? How can we glorify Vrindavan? There is no limit for glorification of Vrindavan. This is sport place of Krishna. Enjoying sport place of Krishna, Vihar Sthali. Vrindavan in totality is meant to serve Krishna. It's his playing place. Krishna takes bath in it, Krishna plays on it, Krishna does everything. It provides Krishna Govardhan Hill, a very beautiful place to sit, very beautiful place to take bath in the form of ponds, very beautiful natural trees, fruits, creepers, everything. It serves not only Krishna, but all Krishna and his friends, his parikars. So, if we say gopis are designing, it's very difficult to become as small as dust particle of this Vrindavan, because this Vrindavan is by its whole heart and in totality serving Krishna. So, what to speak of Vrindavan? Let us see these dumb animals of Vrindavan. Mood means senseless, dumb. Why mood? Maharaj is explaining. If any hunter plays over any flute, hidden means deer, it goes to him. It doesn't have any sense to think why he is playing over the flute. Hunter catches him, kills him and fries him and eats him. But this is so much dupe, so much foolish that it goes there only by hearing. Krishna is playing over the flute and he is so much attracted to the flute. She is, not he, she is. She dear.
What should we call? Dear.
She dear.
Doe.
D-O-E. D-O-E. Doe. Krishna is playing on the flute. It gets attracted by the melodious voice of flute. So much attracted, it comes very near to Krishna. How much near that Krishna can touch it? Her. With her husband. Then she sees Krishna. She sees so beautiful form of Krishna. What beautiful form? Maharaj was explaining here. Varaha Piyuram Natwar. She sees into the eyes of Krishna. Gopis are seeing it. She sees into eyes of Krishna. She gets too much attracted. Love emerges in her heart. And she does puja, worshipping of Krishna. Now Maharaj is explaining in our scripture, puja is explained that we do puja with many paraphernalia. Shodash prakar puja, dwadash prakar puja. By 12 type of paraphernalia we are using for worshipping. Sometimes we are using 16 type of paraphernalia for worshipping. But here with deer, with doe, there is no paraphernalia. Still they are doing puja. So Maharaj is referring here conversation between Rai Ramanand and Mahaprabhu. That what is puja? If we are worshipping with so many paraphernalia, but Krishna cannot be pleased. Krishna can be pleased only. Then he quotes that if there is no hunger, whatever tasty and delicious food is before us, it will have no any taste. If our stomach is filled, there is no taste in the food. But if there is very, very intense hunger in us, then a very trifle food, dry chapati, if we eat, we'll relish it. It will be tasteful. So the taste of the food depends on the hunger, not on its real taste. Similarly, unless there is hunger of love in heart, one cannot really taste any worshipping of Krishna. But one problem is coming here. What it is said, when this doe worshipping Krishna. Seeing Krishna with so much loveful, lustful eyes, Krishna is getting pleased. But when hungry person eats food, he relishes the food. So if any person with the hunger of love does worshipping of Krishna, he should relish. But here what is said? Krishna is relishing. Why is there difference? Maharaj is explaining wonderfully. He is giving the example that Yashoda mother gives milk to Krishna. She feels like to give milk to Krishna. Then Krishna becomes hungry. When a Yashoda mother wants to give milk to Krishna, she wants to serve Krishna by giving her milk, he becomes hungry. And when she doesn't want to give milk, then he is not hungry. Sudama, he went there to Krishna. He had dry, flat rice with him. He and his wife wanted to give it to Krishna with love. But when he went to Krishna and saw his opulence, he was shy and ashamed to give those flat rice to Krishna. But when Krishna came to know that he wants to give something to him, he became hungry. So hungry that he snatched those flat rice from him and ate it. So Krishna's hunger is indirectly proportional to the hunger of the devotee to serve him. More hunger is in devotee in form of love, Krishna will become more hungry. This is what Maharaj is explaining. So worshipping is being taken place. It needs some paraphernalia, like when we do worshipping, then lamps are there. What is that lamp? Eyes of deer. Doe is with her eyes, she is worshipping Krishna. And Krishna sees that she is worshipping me, and there must be some bell to ring. What to do? Then he starts playing over the flute. That flute is ringing bell of worshipping, and deer is worshipping. So these gopis are appreciating how much fortunate are these gopis.
प्रणय विकृति क्या स्नेह प्रणय की विकृति नहीं है, मान प्रणय की विकृति नहीं है। और एक और चलो, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव से आदि है प्रणय की विकृति। कितनी ऊंची चीज है, गोपियां देख रही हैं, अरे इनको प्रणय है, और इसलिए प्रणय के साथ में कृष्ण की इस दृष्टि से ही, प्रणय दृष्टि से ये आरती कर रही हूँ, उनकी आराधना कर रही हूँ। हमने कहा है, हमें प्रणय नहीं जो हम किस प्रकार से कर सके। कौन कहता है कि ये हिरणिया मुँह है, ये तात्पर्य अन्याश्म मूढ़ मतलब। अजी इन प्रणय वाली हिरणियों को यदि कोई मूर्ख आता है तो हम मूर्ख होना नहीं चाहते। मूर्ख होकर के भी यदि कोई कृष्ण को प्रणय की दृष्टि से देखे, उनकी सेवा कर प्रणय करती, तो वो श्रेष्ठ है। ना कि उसके कुल में जन्म लेकर के, कृष्ण की भूमि में जन्म लेकर के, गोपी के घर में जन्म लेकर, उनके साथ में सब समय रह करके भी, खेल कूद करके भी, जिसके अंदर में कृष्ण के प्रति प्रणय नहीं हुआ। तो ये बुद्धिमान मनुष्य जाति में जन्म लेने का क्या प्रयोग व्यर्थ है, बल्कि ये मूढ़ हिरणियां ही धन्य है। इनके अंदर में ऐसा प्रणय है, और उस प्रणय के साथ में कृष्ण की आरती उतार रहे हैं, और कृष्ण बहु कृष्ण उसको ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग इसके दुखी नहीं, हमारे अंदर में तो कहीं भी कुछ नहीं है, हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं जो कृष्ण के समीप में जा सकें, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है। अरे देखो इनका कितना सौभाग्य, सह कृष्ण सारा इसके पतियों के साथ में ही आती है, पीछे पीछे पति चलते हैं। हिरणियों को पता नहीं है कि हमारे पति हमारे साथ में आ रहे हैं कि नहीं, उनको पता है। पति देखे कहो इनका जन्म सार्थक, ये कृष्ण को ही जीवन का सार बनाए हैं, इसलिए उनके पति ये समझते हैं कि हमारी पत्नियां कृष्ण के प्रति अनुराग होती हैं, उनका अनुराग, उनका जीवन कितना सुंदर, उनका जीवन सफल है। इनके पति होने के नाते हमारा भी परम सौभाग्य है जो ऐसे पत्नियों को हमने पाया जो कृष्ण में इतना अनुराग, इसलिए उनका अनुगमन कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये कहने के साथ दूसरा तुम्हारा ही जीवन साथ, और तुम्हारे साथ में संबंध होने से हमारा जीवन भी सार्थक है, इसलिए हमको कृष्ण सार पाते हैं और सचमुच उनका जीवन। इसलिए गोपियां कह रहे हैं प्रणय के साथ में ये कर रहे हैं और कृष्ण उसको, यदि कोई आदमी मूर्ख भी हो, मूर्ख से मूर्ख, किंतु कृष्ण के प्रति उसको अनुराग, अनुराग को छोड़ो श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कुछ भी हो उसका जीवन सार्थक। और बुद्धिमान होकर के, संसार में सबसे बुद्धिमान होकर के यदि कृष्ण के चरणों में श्रद्धा है तो उसका जीवन बेकार का है, इस चीज को समझ लें।
So, gopiyas are seeing that though are having pranay bhav for Krishna. Maharaj is now explaining pranay. What is pranay? Radha Rani, he explains, is said to be pranay ki vikriti. What will call vikriti? Deformed state of pranay.
Transformed.
In fact, when in Hindi it is said pranay ki vikriti, it means when pranay becomes, it gets transformed into more and more special form, more and more elevated form. It transformed into more and more elevated form. She is Radharani. Maharaj is saying that this state does not start even at the stage of snare, man, pranay. This stage starts above Mahabhava. So gopis are situated in that position. So they are seeing deer. These doe are having pranay. Who says that these are moodha, foolish, dumb animal? They are so much intelligent. Why? Because even in the state of animals, they are having pranay bhav for Krishna. What is the use of taking birth in a sensible species like human being? You take birth in Braj, you take birth in family, and you are brought up with Krishna, you are brought up with gopis, but you don't have pranay bhav for, gopis are thinking, you don't have pranay bhav for Krishna, you are not having opportunity to have pranay relationship with Krishna, then it is all useless. These doe who are unintelligent, said to be unintelligent, but really they are not unintelligent. They are very much intelligent. Their husbands are coming behind them. They are not looking up for their husband. They are not knowing it that their husbands are coming behind them. They are so much attached to Krishna that they have forgotten their husband. They are directly connected with Krishna, but still husbands are coming behind them. Why they are coming? They are saying, husbands are saying, oh look, our wife so much attached with Krishna. We are not that much attached with Krishna, but our wives are very much blessed. They are very much fortunate because they are so deeply attached with Krishna. And fortunately, we are their husbands. Because we are related to these doors, so we are also fortunate. In Sanskrit, he dears are called Krishna Sar. Krishna Sar. So Maharaj is explaining that they are saying that we are so fortunate being husband of these doors who are so much deeply connected and attached, having pranay bhava for Krishna, that is why we are called Krishna Sar. Therefore, even if there is a most foolish person, he has got slightest attachment for Krishna, right from Shraddha to Prem, he is fortunate. He is not mood. He is not foolish.
वो क्या कर रहे हैं हमारे पति कैसे हैं हमारे पति ऐसे हैं ये कृष्ण सार नहीं है उनके बल्कि कृष्ण को देखते ही चिढ़ जाते हैं उनका नाम गंध कहीं सुने तो उनको क्रोध हो जाता है जैसे कंस गोवर्धन अभिमन्यु और भी जितने वैसा सखी के पति जितने हैं दूरमद अनंत मंजरी के पति का नाम है दूरमद ये सभी यदि कृष्ण का कहीं गंध भी आ गया नाम का भी गंध आ गया क्रोधित हो जाते सह नहीं सकते झूठ मूठ का कलंक लगाते हैं हमारे पति ऐसे जिनका पति ऐसा हो कृष्ण भक्त हो और जिनकी पत्नी कृष्ण भक्त हो शत्रु को उनका जीवन पड़ा
है
और उनके बच्चे उनके साथ में लग रहे हैं उनको लाड क्या कर रहे हैं जैसे ही आकर के बेलू पड़ी था कृष्ण के बेलू का आपको श्रवण किया है बच्चों का स्नेह करना घास चलना जो खाना है ये भी भूल गए देह हत्यारी की सब भूल गए की भक्ति ऐसी है जिसमें होती है ऐसे है देह है वो क्या इसकी चरम सीमा है उसमें स्वयं उनकी प्रशंसा की उठाओ जी से रोकिया देह दायक सब कुछ हमारे लिए भूल जाती है केवल इसीलिए जीवित है कि कल मैं पंजाब में लौट कर इसीलिए गीता में मनमना बहुत कहती को दिखाया गया है तो गोपियों में ही साथ और कहीं विश्व में नहीं है गोपियां देख रही हैं भाव में तुझे देखो कि ये चल रही है खाना बहुत जरूरी है आदमी लाख काम छोड़कर के खाए और अपने बच्चों को भी स्नेह करे दिन का आदमी परिश्रम करता है शाम को आकर के खाकर अपने बच्चों को साथ चिड़िया भूल गई यंग काम में आवाज है और भूखे बच्चों को भी भूखे बच्चे की तरफ में देखा नहीं पति के तरफ में देखा नहीं घास खाना भी पति को घास उनके मुख में भी बस मुख में मिला गया काम खड़े कर कृष्ण के भक्ति को कहते हैं साधन भक्ति देती कृष्ण की कथा सुनकर ऐसा ही होना चाहिए तो अर्थात हम कृष्ण की कथा ही ऐसी है यदि कृष्ण की कथा सुनकर कृष्ण की कुछ भक्ति कर यदि हमारे हृदय में ऐसी कामना नहीं आई कि संसार का सब कुछ कृष्णार्थ में अति पहुंच गया यदि भावना नहीं आई क्या करेंगे और कृष्ण के लिए कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करते जो कुछ भी क्रिया होगी कृष्ण आपने कभी किया
इस संसार में उसकी कहीं भी दृष्टि नहीं जाएगी, इसलिए वो क्या सावधान कर रही है। देखो यदि घर में स्त्री पुत्र परिवार के साथ में रंग पूर्वक यदि संसार में वो तो करना चाहता है तो खबरदार उन लोगों के पल्ले मत पड़ना है बगल में कुर्सी दबाए हुए बिना पैसे का कहीं पता भी कर नहीं आ पाते, खबरदार उनकी बात करो। तो तुम्हारा इसलिए ये गोपियाँ तो ये देख रही हैं अपने बच्चों को भी प्यार करना छोड़ दिया, हाथ खाना उसने छोड़ दिया, बच्चों करके कृष्ण के समीप पढ़ने को हमारा ऐसा नहीं। इन हिरणियों को लोग लग जाए का भय कुछ पागल नहीं हो गए, कहते हम तो पागल नहीं हुई, हम तो अपने ससुर सास से डर कर अपने पतियों के डर से लोक लज्जा के डर से कृष्ण के समीप जा करके खड़ी होकर के खड़े को लोग उनको देख सकते उनकी पूजा कर सकते। ये लोक लज्जा की पति क्या कर रहा है उसके लिए भी परवाह नहीं करते, पति छोड़ दीजिए तो और उसका पति अपने को सौंपा के मानता है कि ऐसे ही करते हैं हमारे पति हमारे विमुख और हम ऐसे भी धैर्य नहीं छोड़ सकती, लोग लज्जा नहीं।